अरुणिमा एकदम से काली पड़ गई। वो हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। अरुणिमा ने अपनी सारी आपबीती अपनी माँ के सामने सुना दी थी, इस उम्मीद के साथ कि उसकी माँ उसके दर्द को समझेगी और उसे अपने पास ही रख लेगी। वो अपनी बेटी को ऐसे नरक भरे जीवन में दोबारा नहीं भेजेगी। लेकिन उसका पूरा शरीर अकड़ गया जब उसने ये सुना कि उसकी माँ ने कहा कि वो अपने पति के साथ जाए और अपनी शादी को निभाने की कोशिश करे। 2 मिनट तक तो अरुणिमा उनकी बात को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछकर उसने जल्दी से अपनी माँ को चौंकाकर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने माँ? आशा जी अरुणिमा के इस बर्ताव को समझ रही थी। उन्होंने निराशा के साथ अपना चेहरा नीचे कर लिया, जैसे कि वो अपनी बात का पुष्टिकरण कर रही हों कि अरुणिमा ने कुछ गलत नहीं सुना था। वो यही चाहती थी कि अरुणिमा आस्तिक के साथ वापस जाए और अपनी शादी निभाए। अपनी माँ के इस व्यवहार ने अरुणिमा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। वो भावहीन होकर अपनी माँ को देख रही थी, जिनकी आंखों में अब अरुणिमा के लिए कोई परवाह नहीं थी। और क्या ये बस इसी वजह से है क्योंकि अरुणिमा उनकी जैविक बेटी नहीं है, वो उनकी गोदली हुई औलाद है? अरुणिमा इस सच को जानती थी पर मानना नहीं चाहती थी। वो एकदम से हैरान हो गई और अपनी माँ से बोली, क्या तुम बस इसीलिए मुझे वहां वापस जाने के लिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी औलाद नहीं हूँ? आशा जी की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अरुणिमा कभी उनसे ऐसा कहेगी। वो हैरान हो गईं और चिंतित स्वर में बोली, ये तुम क्या कह रही हो बच्चे? तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो? आशा जी के शब्दों में चिंता और हैरानी दोनों साफ महसूस हो रही थी। अरुणिमा को लग रहा था कि वो कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन कोई चीज उन्हें रोक रही है। अरुणिमा ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए उनकी तरफ देखा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या बस यही एक वजह है जो आप मुझे ऐसा कह रही हैं? अरुणिमा के ये कहते हुए भी होंठ कांप रहे थे। वो विश्वास नहीं करना चाहती थी कि जो वो सोच रही है वही सच्चाई है, लेकिन अपने जीवन में इतने सच का सामना करने के बाद वो इस सच का सामना भी करने के लिए तैयार थी। उसने काटते हुए लफ्जों में अपनी माँ से सवाल किया, बताओ माँ, क्या बस यही वजह है कि अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? आशा जी ने पहले उसे विश्वास से देखा, लेकिन फिर अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। अब तक तो उनकी चुप्पी अरुणिमा के दिल को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन अब उनका ये अंदाज भी उसे हैरान कर रहा था। ऐसा नहीं था कि अरुणिमा को कभी लगा ही नहीं कि उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते। जब से उसे ये सच पता चला था, उससे पहले की बात की जाए तो उसके लिए उसके पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स थे, जो उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी अरुणिमा को ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनकी गोद ली हुई बेटी है। आशा जी गंभीर चेहरे के साथ अरुणिमा को देखकर बोली, क्या बकवास कर रही हो? तुम शादीशुदा हो, बड़ी हो, समझदार हो और तुम्हारी शादी कोई मजाक नहीं है। शादी तोड़ने की कई वजह होती हैं, लेकिन औरत को हमेशा अपना घर जोड़कर रखना पड़ता है। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों पर अगर रिश्ता टूटने लगे तो हर दूसरा घर कचहरी में जाकर खड़ा हो जाएगा। पंडितों से ज्यादा डिवोर्स लॉयर्स होंगे। बेवकूफों वाली बातें मत करो अरु। आदमी का क्या है, एक औरत छूटेगी तो दूसरी ले आएगा, लेकिन औरत ही होती है जो अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करती है। हर मुमकिन हालत में उसे अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर रिश्ता नहीं तोड़ा जाता, कहीं पर एडजस्ट भी करना पड़ता है। आशा जी कुछ गलत नहीं कह रही थी। वो अरुणिमा को वही बातें बता रही थी जो समाज ने औरतों के लिए बनाई है, और वो वही कह रही थी जो एक माँ अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उसे सिखाती है। लेकिन इन सब में अरुणिमा कहीं भी शामिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी। एडजस्ट करना, चीजों को संभालना, अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करना, लेकिन वो क्या करे जब उसकी हर कोशिश नाकामयाब ही साबित हो रही थी। वो अपना घर संभाले भी तो किस बुनियाद पर, जब उसका जीवन साथी ही उसके साथ नहीं है? नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस आदमी के पास वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे इस शादी में नहीं रहना है तो क्यों नहीं समझती हो तुम? अरुणिमा की आवाज कांप गई थी। तुम्हें क्या लगता है, इतनी बड़ी बात मैं बिना किसी बुनियाद के कह रही हूँ? मैं इस शादी को नहीं निभा पाऊंगी माँ, प्लीज मुझे बचा लो। अरुणिमा की आंखों में अब दर्द, हताशा और गुस्सा सब एक साथ झलक रहे थे, लेकिन उसकी माँ का चेहरा अब भी कठोर था। अरुणिमा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, आशा जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से में उसे देखते हुए बोली, बस बहुत हो गया अरुणिमा, जब से आई हो तब से बकवास किए जा रही हो। हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अपनी शादी तोड़ने की बात कर रही हो? कान खोल कर सुन लो, इस समाज में छोड़ी हुई औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। भले ही आदमी गलत हो, लेकिन गलत हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है। और तुम इस तरह की हरकत करके हमारी परवरिश पर सवाल उठा रही हो। हमने तुम्हें हालातों से भागना तो नहीं सिखाया था, हमने तो हमेशा यही सिखाया था कि चाहे जो भी हो, हालात का डटकर मुकाबला करो। लेकिन तुम तो कायरों की तरह भाग रही हो।
मैं कायर नहीं हूं माँ, और न ही किसी समस्या से भाग रही हूँ। मैं बस आजाद होना चाहती हूँ, आजादी से सांस लेना चाहती हूँ। मैं आस्तिक के साथ नहीं रह सकती। वो इंसान नहीं है माँ, वो एक जानवर है, एक दरिंदा, एक शैतान। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे बचा लो। अगर मैं उसके पास वापस गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और मेरी मौत से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
अरुणिमा आखिरकार रोते हुए अपनी माँ के सामने अपनी शादी खत्म करने की आखिरी कोशिश कर रही थी। वो उन्हें समझाना चाहती थी, मनाना चाहती थी, लेकिन आशा जी ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, बस बहुत हो गया अरुणिमा, ये बचपना बंद करो। तुम आस्तिक से अलग नहीं हो सकती, और यही आखिरी फैसला है, अगर तुमने ऐसा सोचा भी। पर इससे पहले कि आशा जी आगे कुछ कह पाती, अरुणिमा ने अपनी साड़ी का आंचल हटा दिया और अपना सीना अपनी माँ के सामने खोल दिया। जैसे ही उनकी नजर उसके शरीर पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां इतने गहरे जख्म थे कि वो अपनी आंखें वहां से हटा ही नहीं पा रही थी। अरुणिमा रोते हुए अपनी माँ को देखते हुए बोली, ये देखो माँ, ये सब उसने किया है। ये अकेले जख्म नहीं है जो मेरे शरीर पर है, अभी तो मैंने सिर्फ आंचल हटाया है। अगर पूरी साड़ी हटा दूं तो तुम्हें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर ऐसे ही जख्म नजर आएंगे। अब भी चाहती हो कि मैं उस आदमी के पास वापस जाऊं और इस बेमतलब की शादी को निभाऊं?
अरुणिमा का पूरा चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया था, लेकिन आशा जी धीरे से उसका आंचल उठाकर उसके कंधे पर रखते हुए बोली, मैं समझती हूँ अरुणिमा कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुम आस्तिक से अलग नहीं हो सकती। वो तुम्हारा पति है, और दुनिया के सामने वो तुम्हारा पति ही रहेगा। पूरी दुनिया के सामने तुम रायचंद परिवार की बहू हो, और यही बात तुम्हें वहाँ सुरक्षित रखती है।
सुरक्षित रखती है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुझे किससे खतरा है जो मुझे सुरक्षा की जरूरत है, और आप मुझे वहाँ सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए भेज रही हैं? लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि जिस इंसान के पास आप मुझे भेज रही हैं वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है? बाकी किसी से मुझे खतरा हो या ना हो, लेकिन आस्तिक से बड़ा खतरा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। मुझे उससे सुरक्षा चाहिए। आशा जी ने निराशा भरी आंखों से अरुणिमा को देखा और भारी आवाज में बोली, मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा तकलीफ झेल चुकी हो। लेकिन अरुणिमा, मेरे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें और मजबूर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारे पिता की हालत देख रही हो ना, ऐसे में तुम्हें लगता है कि मैं और कुछ सोचने समझने की हालत में हूँ? मेरी बात मान लो बच्चे, अभी घर वापस जाओ और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दो, देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। अरुणिमा अपनी माँ को ऐसे देख रही थी जैसे वो इस औरत को जानती ही नहीं। ये मेरी माँ नहीं हो सकती, उसका मन चीख उठा। उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी, उसे जरा सी चोट लग जाए तो पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन आज वही माँ उसे कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसे बर्दाश्त करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं हो सकता। अरुणिमा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपनी माँ को विश्वास न कर सकने वाली नजरों से देखते हुए बोली, इतना सब सुनने के बाद भी तुम यही चाहती हो कि मैं उसके पास वापस जाऊं? आशा जी उसे हैरानी से देखने लगी। अरुणिमा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे और गहरी सांस लेते हुए बोली, और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो तो मुझे अब यकीन हो गया है कि जो मैं सोच रही थी वही सही है। आशा जी के चेहरे पर हैरानी थी। क्या सोच रही हो तुम? अरुणिमा गुस्से में खड़ी हो गई और अपनी माँ को घूरते हुए बोली, यही कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ थी, इसीलिए तुमने मुझे एक दरिंदे के हाथों सौंप दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी थी जो तुमने शादी करवाकर खत्म कर दी। दुनिया के सामने तुमने अपनी बेटी को रायचंद खानदान की बहू बना दिया और खुद को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया। यही सच है ना? उसके शब्द कड़वे थे पर उसके दर्द से भरे हुए थे। आशा जी ने उसे गुस्से से देखा। अरुणिमा को लगा कि इतना सब सुनने के बाद उसकी माँ का दिल पिघल जाएगा, वो उसकी ओर ममता भरा हाथ बढ़ाएंगी। लेकिन जब उसकी माँ ने उसी कठोरता से जवाब दिया, हाँ यही बात है, तो अरुणिमा पूरी तरह से खामोश हो गई। एक ही पल में उसका पूरा जीवन, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। उसकी माँ के शब्दों में कहीं भी ये नहीं था कि वो झूठ बोल रही थी। मतलब मैं सच में सिर्फ एक बोझ थी। शादी के बाद से ही पूरा परिवार उससे दूरी बनाए हुए था, सिर्फ इसीलिए कि अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अरुणिमा और आशा जी एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। आशा जी के चेहरे पर थोड़ी कठोरता थी, लेकिन अरुणिमा का चेहरा पूरी तरह से हताशा से भरा हुआ था। तभी उनके कानों में कदमों की आहट पड़ी। आस्तिक कमरे की तरफ आ रहा था। आशा जी ने बेरुखी से अपना चेहरा मोड़ा और ठंडी आवाज में बोली, अपने घर जाओ अरुणिमा, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये मेरी माँ नहीं हो सकती।
अरुणिमा का दिल इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ उसे बोझ समझती हैं। अगर ऐसा था तो वो प्यार, वो अपनापन, वो सब झूठ था क्या? उसने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने पिता की तरफ देखा। वो अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी हो चुकी थीं। शायद वो रोना चाहते थे लेकिन हालात उनके साथ नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ की एक उंगली उठाकर कुछ इशारा किया लेकिन अरुणिमा इस समय इतनी टूटी हुई थी कि उसे समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा लेकिन उनका चेहरा अभी भी दीवार की तरफ था। आशा जी की आवाज आई, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारी बारी है उनके किए हुए एहसानों का बदला चुकाने की। अपनी शादी निभाओ और उसे सफल बनाने की कोशिश करो। बदला चुकाऊं? ये कैसा बदला है? क्या मेरी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती थी? अरुणिमा के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बाहर निकली अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। बूढ़ी ठक गई, हैरानी से पीछे पलटी। उसे एहसास था कि उसकी माँ दरवाजे की दूसरी तरफ थी। शायद वो रो भी रही थी लेकिन अरुणिमा का दर्द ज्यादा था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। शायद उसकी माँ को उसके एहसास की परवाह होगी। उसने अपना सिर दरवाजे से टिका लिया और दिल में अपनी माँ को याद करते हुए कहा, मुझे पता है आपके शब्द कठोर थे लेकिन उनमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं उस इंसान के पास वापस जाऊं तो ठीक है, मैं जा रही हूं। पर याद रखना, आप बचपन से ही मेरे मन की बात पहचान लेती थी, इसीलिए मैं आपको अपने दिल की आखिरी बात कह रही हूं। मैं उसके पास जा तो रही हूं लेकिन शायद ये आखिरी बार होगा जब आप मुझे देख रही हैं। जल्दी ही या तो आपको मेरी खबर मिलेगी या मेरे ना होने की खबर।